SBS हिंदी।
2019 भारतीय चुनाव शुरू हो चुके हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जबकि 19 मई को सातवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 23 मई को होगी, जब ये पता चलेगा कि भारत की जनता ने किसको अपना नेता माना है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। क्या मोदी जी की रणनीति सफल रहेगी? क्या वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? और इस चुनाव के मुद्दे क्या है, लोग किसे वोट देंगे? ये चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेलबर्न स्थित मोनैश यूनिवर्सिटी के दो सह प्राध्यापक विनोद मिश्र जी और गौरव दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते, SBS रेडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपको ये होगा कि सभी लोगों का एक ही सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे?
लगता है इस बार चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा टाइट होगा, ऐसी सब अपेक्षा है, और उसकी कई वजह हैं। मगर ये भी लगता है कि जहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों की वर्तमान स्थिति है और जितना उनमें तालमेल बन पाया है इस समय तक, उससे ये भी लगता है कि वो शायद अगली सरकार बनाने में सफल नहीं होंगे, और मोस्ट लाइकली मोदी जी ही सरकार बना पाएंगे लगता है, पर शायद कम मेजॉरिटी के साथ। और
विनोद जी, आपको क्या लगता है, मोदी जी एक बार फिर या उनको कठिनाई होगी इस साल?
मौसीकी, मैं गौरव से सहमत हूँ हर मुद्दे पे। मुझे भी लगता है शायद मोदी जी सरकार बना पाएंगे, लेकिन मेरा एक ये है कि शायद इस बार उतनी बड़ी मोदी लहर नहीं है जो पिछली बार थी। मैंने आज सुबह देखा कि ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल हुए हैं, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और क्या फोरकास्ट है उनका, कह रहे हैं कि NDA को जो है 250 से 300 की रेंज में, मतलब कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं जो ज़्यादा पिछले बार से बड़ा नंबर बता रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा पेसिमिस्टिक जो पिछली बार से कम नंबर, 240-250 से 300 की रेंज में लोग NDA पे फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसा गौरव ने कहा, शायद विपक्ष उतना एकजुट भी नहीं है, जिसकी वजह से सरकार बनाना विपक्ष के लिए शायद संभावना नहीं है।
तो आप दोनों मानते हैं कि मोदी जी एक बार फिर लौटेंगे, शायद उतनी मेजॉरिटी के साथ नहीं, पर ज़रूर लौटेंगे। युवा वोट का जो मसला है, ये बार 70वीं लोकसभा के गठन के लिए 90 करोड़ वोट डाले जाएंगे, जिसमें से 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ वोटर इस चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। युवा लोग में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये इलेक्शन में। मोदी जी के लिए एक वेव था उनके लिए पिछले चुनाव में 2014 में, क्या 2019 में ये देखने को मिल रहा है कि युवा लोग भी उन्हें बैक कर रहे हैं?
नहीं, युवा बेरोजगारी एक डेफिनेटली एक मुद्दा है, और बहुत सारे जो है वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है मोदी सरकार के, वो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी अपने चरम पर है। दूसरी तरफ जो मोदी सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, ज़्यादातर आपका जो जॉब ग्रोथ है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हुआ है या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में हुआ है। तो हम लोग थोड़ा इस पर और चर्चा करना चाहते हैं, इन आंकड़ों को देखना चाहते हैं, जिससे एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पिक्चर बन सके।
आप क्या कहेंगे गौरव जी?
हम मेरे लिहाज से बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है युवा लोगों के लिए। तो अब कई तरह की इसमें बातें हैं, मतलब बेरोज़गारी के आंकड़ों को लेकर भी बहुत कुछ चर्चा रही है, और उसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जो बेस्ट आंकड़े जो हैं हमारे को अवेलेबल इस समय, उसके हिसाब से अबाउट जो बेरोज़गारी की दर है अबाउट 7% के करीब है अभी इस वक्त, 7.1%। पर अगर आप युवा वर्ग को देखें 20 से 29 साल तक, तो ये बेरोज़गारी की दर लगभग 20% है, और 20% बहुत बड़ा हिस्सा है, और युवा वर्ग की संख्या भी अभी काफ़ी है, करीब करीब 9 करोड़ के करीब मेरे ख्याल से युवा वर्ग के लोग हैं इस समय, तो एक बड़ा हिस्सा उसमें से काफ़ी असंतुष्ट है, और इसका प्रदर्शन भी हमें बार बार देखने को मिलता है एक अलग अलग तरीके से, तो वो रोष तो है युवा में इस बारे इस बात को लेकर। इसके बड़े कई तरह के इंडिकेटर्स हैं जो इसको शो करते हैं। सवाल यह है कि इलेक्शन के टाइम में तरह तरह की चीज़ें उठाई जाती हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, तो ये रोष या आक्रोश रैली वोट का रूप लेगा या नहीं देखने की बात है अभी भी, मगर एक ये चुनौती है मोदी सरकार के लिए वापस आने के लिए।
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में जाहिर है कि राजनीतिक दल इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे, और ये हमने पिछले 10 साल में देखा भी है। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो आपके अनुसार मोदी जी की ऐसी कोई नीति है जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो, अच्छा या बुरा?
मोटे तौर पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था एक तरह से अच्छी चल रही है, और उसके पैमाने मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो कई पैमानों पे अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, और इनफैक्ट एनडीए गवर्नमेंट की ये इलेक्शन की पिच भी रही है और रहेगी भी थ्रू आउट। पर फिर उसके बाद हैं काफ़ी सारी इस पर क्वालिफिकेशंस इस रिकॉर्ड पर, और उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि वृद्धि की दर है चाहे औसत पे 7% है, पिछले 1.5 साल में कम हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति थोड़ी धीमी पड़ी है। उसकी भी कुछ वजह रही हैं, तो डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा धक्का लगा अर्थव्यवस्था को, उसकी कोई जीएसटी को लेकर भी अभी कुछ एक शॉर्ट टर्म डिस्टेबलाइजेशन है, अब उसके वजह से भी थोड़ा बहुत आर्थिक एक्टिविटी में उसका असर पड़ा है। फिर उसके अलावा हमारे किसानों के और एक ग्रामीण एरियाज़ में जो जिस तरह का अल्प विकास को लेकर काफ़ी असंतोष और डिस्ट्रेस है, वो भी एक बड़ा एक बड़ी डेवलपमेंट है पिछले 3-4 सालों में, और उसको भी एक तरह से किसी तरह से ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है।
विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कुछ उनके लिए सफल रहा है तो वो कौन सी बात रही है पिछले 5 सालों में?
मुझे लगता है एक तो जैसे गौरव ने कहा, एक तो सरकार के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि भाई अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी रही है, उसमें शायद कुछ कमी आई है लेकिन फिर भी ओवरऑल इकोनॉमी इज डूइंग गुड। दूसरा मुझे लगता है कि कुछ अगर सफलताओं को देखा जाए तो जैसे एक मैं कहूँगा कि एक GST रिफॉर्म बड़ा अचीवमेंट है, भले ही शॉर्ट टर्म उससे ड्रॉबैक है लेकिन मतलब मुझे लगता है इट्स ए स्टेप इन राइट डायरेक्शन। दूसरा मुझे लगता है कि सरकार ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, रोडें बनी हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, काफ़ी गांव तक बिजली पहुंची है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों का आगे चलकर अर्थव्यवस्था में अच्छा असर दिखेगा। तीसरा जो है जैसे कुछ सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं जैसे जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना और क्या नाम है उज्ज्वला योजना, मुझे लगता है इन सब योजनाओं को भी सरकार एक अपने अचीवमेंट की तरह गिना सकती है, और इनका अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ तो आई थिंक इसका भी एक काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा इकॉनमी।
आज के लिए मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये होगा कि जो विपक्ष है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी ने फॉर्मली राजनीति में कदम रखा है, आप विपक्ष को ये चुनाव में कैसे देख रहे हैं, उनका प्रभाव क्या होगा?
देखिए पहली बात ये जो है जैसे इस बार के इलेक्शन में और एक्चुअली पिछले बार के इलेक्शन में भी ये हुआ था, कहने के लिए हिंदुस्तान में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम लोग किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते हैं, अपने लोकल कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, लेकिन मोदी के आने से एक जो परिवर्तन हुआ है और 2014 से ही हुआ है कि वो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी जैसा चुनाव हो रहा है। मुद्दा है मोदी, आज के डेट में भी एक मुद्दा है मोदी, मोदी के सपोर्टर कह रहे हैं भाई मोदी के लिए वोट करो, अपने लोकल कैंडिडेट का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, और विपक्ष भी कह रहा है मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमें वोट करो। तो प्रियंका गांधी भी उसी कहानी में एक छोटा सा एक हिस्सा है, प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि भाई मैं राजनीति में आया हूँ मोदी को रोकने के लिए, और मुझे लग रहा है प्रियंका गांधी के आने से हलचल जरूर हुई है और शायद कांग्रेस काफ़ी एक्साइटेड भी है, बट एक आम आदमी शायद उतना एक्साइटेड नहीं है इस बात से कि मतलब प्रियंका गांधी आई हैं, मतलब क्या क्रेडेंशियल है, क्या राजनीतिक अनुभव है उनका, क्यों आदमी माने कि ये इनके आने से कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से अच्छा शासन चला सके।
हाँ, मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में तो उनका एकदम ही काफ़ी बुरा हाल रहा था, तो इस बार डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर होगी, ऐसी अपेक्षा करी जा सकती है। तो जहाँ तक प्रियंका का और राहुल गांधी का सवाल है, मैंने एक्चुअली कई प्रियंका की स्पीचेस उत्तर प्रदेश में जो अभी रिसेंटली दे रही हैं वो सुनी है एक्चुअली, और मेरे लिए जो रिफ्रेशिंग बात रही है उसमें कि राहुल गांधी के मुकाबले में प्रियंका काफ़ी कुछ संयम से बोलती हैं। दो एक बात कहूँगा उसके जो जिसकी वजह से मैं भी कुछ सहमत हूँ कि इसका असर शायद इतना बड़ा ना हो जितना शायद पहले सोचने में लगे। एक वजह तो यह कि प्रियंका देर से आई हैं इस चुनाव के मैदान में, उतरी हैं देर से, और अभी भी कोई सीट तो लड़ नहीं रही हैं, तो कैंपेन ज़रूर कर रही हैं। तो एक तो यह वजह, दूसरी वजह यह है कि ये जो शुरू में 3-4-5-6 महीने पहले जो महागठबंधन की बात हुई थी वो थोड़ा बिखर गया है, और थोड़ा ही नहीं काफ़ी बिखर गया है। उस वजह से एक्चुअली जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, और जैसे अरुण शौरी और अलग लोगों ने भी, कई लोगों ने भी कहा उस विषय में कि अगर पॉपुलर वोट को देखा जाए तो ये 2014 के चुनाव में भी अगर सब पार्टियां इकट्ठी होती तो मोदी गवर्नमेंट नहीं, एनडीए गवर्नमेंट नहीं जीत सकती थी। तो वो चुनौती एक्चुअली ये लोग उसका एक राजनीतिक स्तर पर उसको चुनौती का सामना नहीं कर पाए हैं विपक्षी पार्टियां, और कांग्रेस का भी इसमें एक बहुत खामी रही है कि वो एक तरह से गठबंधन नहीं बना सकी है कई राज्यों में, तो अभी बिखर सा गया है और वोट भी उस वजह से टूटेगा।
आप दोनों आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। धन्यवाद मौसी।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।